हरे कृष्णा। वेणु गीत के दौरान गोपियां गोवर्धन की महिमा का वर्णन कर रही हैं। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। कल इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे, आज भी करेंगे और कल भी जारी रखेंगे। तो आइए इस श्लोक को कंठस्थ करने का प्रयास करें। न केवल यहां आप इस श्लोक को दोहराने का प्रयास कीजिएगा, परंतु घर में जाकर भी इसको कंठस्थ करने का प्रयत्न कीजिए। तो आइए आज इस श्लोक का उच्चारण करें।
हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, यद् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्, पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः। हंतायमद्रिर्वाद,
समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गवों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पानी, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। कल इस श्लोक के अलग अलग शब्दों की चर्चा हम कर रहे थे। गोपियां खुश भी हैं और दुखी भी हैं। गोवर्धन इतने महान भक्त हैं, कितनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए बहुत खुश हैं और इस खुशी में प्रशंसा कर रही हैं गोवर्धन पर्वत की। साथ साथ उनको ये खेद भी है कि हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हम कृष्ण की सेवा इस तरह से कर सकें और हम श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त भी नहीं कर सकते जैसे कि गोवर्धन कर रहा है। और गोवर्धन जिस ढंग से श्री कृष्ण की सेवा करता है, इसलिए ये तो हरिदास वर्य है, न केवल हरिदास लेकिन हरिदासों में से श्रेष्ठ है। क्यों है ये वर्य श्रेष्ठ? सबसे पहली बात तो भगवान की सेवा में वो इतना प्रसन्न रहता है, अपनी सेवा में इतना आनंद लेता है कि हम सबको ये एक सबक है, एक आदर्श है कि कैसे श्री कृष्ण की सेवा की जानी चाहिए। और दूसरी बात कि ऐसी सेवा से वो श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है। साथ साथ केवल श्री कृष्ण नहीं, उनके सारे भक्तों की सेवा अतुलनीय तरीके से करता है। और इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरण कमल उसके शरीर से स्पर्श करते हैं, इसलिए बहुत मुदित अवस्था में, हर्षित अवस्था में हमेशा रहता है। यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, प्रकृष्ट रूपेण मोदः प्रमोदः। और इस प्रकार से तरह तरह से वो भगवान की सेवा करता है। मानं तनोति, मान सम्मान देता है, न केवल कृष्ण को, बलराम को, सबको। सह गो गणयोस्तयोर्यत, कृष्ण बलराम के साथ उनके गाय, बछड़े और ग्वाल बालों का सम्मान भी करते हैं। कैसे? मानम तनोति, ऐसे सेवा करके। और ये सब चीजें, उनकी जो आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं, उनके मनोरंजन की वस्तुएं हैं, वो सब प्रदान करता है। पानी सूय वस कंदर कंद मूलय। तो प्रमोद के लक्षण ये हैं कि गोवर्धन पर्वत अष्ट सात्विक विकार प्रकट करता है। हम कई बार सुन चुके हैं कि भक्ति में जब व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है तो तरह तरह के विकार, आध्यात्मिक विकार उसके शरीर में प्रकट होने लगते हैं, और ये विकार जो है कोई साधारण नहीं है। भौतिक जीवन में भी ऐसे शरीर में कभी कभी विकार दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि किसी को पसीना आता है, किसी की बोली बंद हो जाती है, किसी के शरीर में कंपन आ जाता है। ये सब चीजें साधारणतः हम देखते हैं लोगों में, परंतु जो भक्ति भाव में, अति तीव्र भक्ति भाव में ये लक्षण प्रकट होते हैं तो ये विशेष है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राकृत सहजीय कहते हैं। ये लोग वो हैं जो भक्ति को बहुत सहज लेते हैं, बहुत सस्ता लेते हैं, और ऐसे अष्ट सात्विक विकारों का नकल करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो लोग सस्ते में ही बिना उस स्तर तक पहुंचे हुए, बिना अपने हृदय के भीतर अनर्थों का दमन शमन किए हुए, जो ऐसे नकली विकार अपने शरीर में प्रकट करते हैं, वो सारे वेदों के सिद्धांतों को धो डालते हैं उन आंसुओं से। ये कोई सस्ती बात नहीं है कि कोई बैठकर रोना शुरू कर दे। ये भक्ति भाव जो है ये बहुत दुर्लभ चीज है। तो गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके शरीर में भी ये चिन्ह पाए जाएंगे। रोमांच कंपाशु तरंग भाव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम सुबह को प्रार्थना करते हैं, रोमांच खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंपन हो जाता है शरीर में, अश्रु बहते हैं। तो ये सब लक्षण है। तो गोवर्धन पर्वत जो है, इनके तीन प्रमुख जो सात्विक विकार हैं वो है रोमांच, अश्रु और स्वेद। रोमांच मतलब शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, अश्रु मतलब आंखों से पानी बहने लगता है, और तीसरा है स्वेद, पसीना आने लगता है। तो अब हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि गोवर्धन ठीक है, भक्त हैं, तरह तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको सुंदर जल अर्पण कर रहे हैं, उनको और भक्तों को सुयवस, फिर उनको गायों के लिए चबाने के लिए खाने के लिए घास दे रहे हैं, उनके आश्रय के लिए कंदर या गुफाएं प्रदान कर रहे हैं, और उनको खाने के लिए कंदमूल दे रहे हैं। ये सब ठीक है, इस तरह से सेवा कर रहे हैं, परंतु ये सात्विक विकार जो प्रकट हो रहे हैं ये क्या बात है? ये तो पर्वत है, आखिर पर्वत के ऊपर ऐसे विकार या ऐसे लक्षण कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो वैष्णव आचार्य इन्होंने इस विषय का विश्लेषण किया हुआ है गहराई में, और वो बताते हैं कि जो रोमांच वो क्या है, वो ये है कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो रोंगटे वो खड़े हो रहे हैं। तो रोंगटे क्या है? वो पेड़ और घास, सुयवस, और कई तरह के घास वहां पर उगते हैं गोवर्धन के ऊपर। हम वर्तमान काल की वर्तमान क्रिया का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से अभी भी ये सब हो रहा है, परंतु शायद अब हम वहां अगर जाएं तो हमें केवल पत्थर दिखाई पड़े और इधर उधर केवल थोड़ा बहुत घास दिखाई पड़े। परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं, अप्रकट रूप में अब भी चल रही हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आंखें नहीं हैं इन लीलाओं को देखने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तो उन्होंने इन लीलाओं को प्रकट रूप से दर्शाया, लेकिन जब वृंदावन से वो फिर मथुरा चले गए और फिर वहां से आगे द्वारका चले गए, तो उनकी प्रकट लीलाएं मथुरा में हुई, द्वारका में हुई, लेकिन वृंदावन में अप्रकट रूप से वो चल रही थी और हैं भी और हमेशा चलती रहेंगी। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि भगवान श्री कृष्ण एक कदम छोड़कर भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। जब वो प्रकट रूप से चले भी जाते हैं तो अप्रकट रूप से उनकी लीला हमेशा जारी रहती है, और जब लीला जारी है इसका मतलब है कि वृंदावन का जो भौगोलिक वर्णन है बाहरी रूप से, वो भी बदलेगा नहीं। तो जो वृंदावन की अवस्था थी, जो ऋतुएं वहां थी और जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य था, वो भी श्री कृष्ण के लीलाओं का एक महत्वपूर्ण अंश है, अंग है। इसलिए अगर वृंदावन में अब भी अप्रकट रूप से ये लीलाएं चल रही हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वहां का प्राकृतिक वर्णन जो है वो भी वैसे ही रहेगा। इसलिए वर्तमान काल की, वर्तमान क्रिया की प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसे गोवर्धन का घास जो है, कई तरह के घास है उसमें, लेकिन प्रमुखतः दुर्वा घास। अब दुर्वा घास के बारे में तो आपने सुना होगा। दुर्वा घास का महत्व वैदिक संस्कृति में काफी है। जो वैदिक यज्ञ संपन्न किए जाते थे उनमें अवश्य दुर्वा घास का प्रयोग किया जाता था। कुश, दुर्वा, ये सब बड़े महत्वपूर्ण घास, पवित्र घास माने जाते हैं। साथ साथ अतिथियों का स्वागत करने के लिए भी दुर्वा घास का प्रयोग किया जाता था वैदिक संस्कृति में। तो ये दो महत्वपूर्ण उपयोग हैं इस दुर्वा घास के, जो कि गोवर्धन पर्वत पर पाए जाते हैं। लेकिन इसका और एक तीसरा कारण है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या है बताइए? गोवर्धन के घास का प्रयोग प्रमुखतः किसके लिए होता है? गायों के लिए। तो क्योंकि यह गायों के लिए आहार है, इसलिए इसका गौरव इसमें, इसकी महिमा इसमें है। ये घास जो है अति स्वादिष्ट है, अति सुगंधित है और बहुत कोमल भी है। और कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्रों के जो गौवे हैं, उनके बछड़े हैं, उनके लिए ये प्रमुख आहार है। और ये सबसे प्रसिद्ध है वृंदावन का या गोवर्धन का घास। इसलिए तो गोवर्धन अपने नाम को सार्थक करता है। गोवर्धन शब्द का अर्थ क्या है? गोवर्धन, गायों का वर्धन, अर्थात उनका रक्षा करने का, उनका रक्षण, उनका पालन, ये करना काम है गोवर्धन का। और गोवर्धन क्या करता है? इन सुंदर घासों को देकर उनकी पुष्टि कराता है, उनका पोषण करके। गाय जब घूमते हैं, चरते हैं गोवर्धन के ऊपर, तो बड़े हर्षित होकर चलते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर वातावरण गोवर्धन प्रस्तुत करते हैं उनके लिए, चरने के लिए। आजकल हम देखते हैं कि गायों की बड़ी बुरी दशा है, उनको कहां कहां चरना पड़ता है। जब शहरों में आपने देखा होगा, सब जगह गाय इधर उधर चरते हैं, क्योंकि उनके पालक उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नहीं देना चाहते, उनको खर्च नहीं करना चाहते, या कोई भी कारण क्यों ना हो। और फिर वो इधर उधर जाकर खाने का प्रयास करते हैं। कभी कचरे के डब्बे में जाते हैं जहां पर प्लास्टिक के थैलियां रहते हैं, उसको खा जाते हैं, वो प्लास्टिक की थैली पेट में चले जाती है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे दिल्ली शहर में कितने सारे गाय मर गए, फिर नगर पालिका ने घोषणा की कि किसी को कचरे के डब्बों में प्लास्टिक की थैली नहीं फेंकनी चाहिए। यहां तक बात पहुंच गई थी। और आजकल भी हम यहां पर देखते हैं कि जगह जगह, क्योंकि उनको घास नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता, तो कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कागज के टुकड़े खाते हैं वगैरह। और जगह जगह आजकल बारिश कम हो गई है तो घास नहीं मिलता, तो गाय भी इधर उधर जाके कुछ अच्छी तरह से आहार प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए दुबले पतले हो जाते हैं, उनमें कितने सारे रोग आ जाते हैं, सही मात्रा में दूध नहीं प्रदान करते, और जो भी दूध देते हैं उनमें वो गुण नहीं रहते जिससे कि जो पीते हैं उस दूध को उनका भी सेहत जो है ठीक ठाक रहे। लेकिन गोवर्धन में चरने वाली गाय जो है हमेशा खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी। अगर इंसान को, अगर मनुष्य समाज को खुश रहना है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं एक जगह, उनको गौओं को खुश रखना चाहिए। कितनी सरल बात है। गौओं को खुश रखने से वो बड़े प्रचुर मात्रा में दूध प्रदान करेंगे, और क्योंकि वो खुश है, वो गायें खुश हैं, तो इसलिए उनका दूध जो है बड़ा पौष्टिक और मीठा रहेगा। और जो मनुष्य इस दूध का पान करेंगे वो भी हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, उनकी मस्तिष्क भी, मस्तिष्क का विकास भी हो जाएगा, उनकी बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म और तीव्र हो जाएगी, आध्यात्मिक एक भावना उत्पन्न हो जाएगी, और गायों का रक्षण करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। सारे आशीष जो है वो मनुष्य समाज के ऊपर प्रदान करेंगे। एक बहुत सरल बात है, लेकिन आजकल के लोग इसके बारे में विश्वास नहीं करते हैं। तो गाय जो है जब गोवर्धन पर्वत के ऊपर चर रही होती थी तो खुश होती थी बिल्कुल, क्योंकि गोवर्धन ने उनका वर्धन संवर्धन किया था, सब कुछ सारी व्यवस्था उनके चरने के लिए की थी, उनके विश्राम के लिए, उनके खाने के लिए, पानी पीने के लिए, सब सारी व्यवस्था वहां पर थी। और इस प्रकार से गोवर्धन का आश्रय का अनुभव करते हुए वो इधर उधर चरती थी और इतना दूध देती थी कि वो दूध स्वाभाविक तौर से गोवर्धन के ऊपर गिर जाता था। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज के समय, केवल 5000 वर्ष पूर्व, ये भी तो 5000 वर्ष पूर्व की बात है, कि गाय इतने संतुष्ट रहती थी, इतने हृष्ट पुष्ट रहती थी कि जैसे वो चढ़ते थे पर्वतों के ऊपर गोचर भूमियों में, तो इतना दूध गिरता था कि जो गोचर भूमि है वो हमेशा उसमें वो जो गीलापन रहता था, गीलापन किसका, पानी का नहीं, जैसे बरसात के समय रहता है दूध का गीलापन। जैसे बरसात में हम देखते हैं कि मिट्टी में गीलापन आ जाता है पानी से, बरसात से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के समय गीलापन जो मिट्टी में हुआ करता था दूध से हुआ करता था। तो सोचिए, आजकल तो दूध इतना बड़ा एक ऐश्वर्य माना गया है, वैदिक संस्कृति में वास्तव है, लेकिन इतना महंगा हो गया है, 1 लीटर के लिए न जाने कितना आजकल देना पड़ता है। और हमने सुना कि वास्तव में दूध के, गाय के दूध के हिसाब से भैंस का दूध ज्यादा महंगा है, बराबर है, है ना ऐसे, क्योंकि वो चाय के लिए अच्छा है ना, गाय के दूध में जो फैट है वो कम है, इसलिए आजकल लोग नहीं पसंद करते, और जो भी दूध देते हैं वो पानी से मिलाकर देते हैं, तो इसलिए अच्छा दूध नहीं मिलता। तो खैर, गोवर्धन के ऊपर भी ऐसे ही अवस्था थी। एक भक्त हमको बता रहे थे कि यहां कई दिन पहले, 1-2-4 महीने पहले उन्होंने एक गाय को देखा जो यूं ही चर रही थी अपने बछड़े के साथ, बछड़े ने पी लिया होगा दूध और वो गाय स्वाभाविक रूप से वो जमीन के ऊपर दूध डालती जा रही थी, बछड़ा पी नहीं रहा था, कोई गोपालक दोहन नहीं कर रहा था, अपने आप केवल वो जमीन के ऊपर दूध दे रही थी। अब भी इस समय भी कई बार लोग ये तर्क करते हैं कि आप दूध का इतना महत्व, दूध को इतना महत्व क्यों देते हैं, वास्तव में गाय का दूध केवल उसके बछड़े के लिए है, तो मनुष्य को नहीं पीना चाहिए, ये हिंसा है। वास्तव में लोग नहीं जानते कि भगवान की व्यवस्था क्या है। भगवान ने न केवल गाय के बछड़ों के लिए दूध दिया है गाय के शरीर के भीतर, लेकिन मनुष्यों के लिए भी, ये भगवान की परिपूर्ण अवस्था है। जो गाय के बछड़े के लिए आवश्यक है उसके स्वास्थ्य के लिए, उससे कहीं ज्यादा गाय दूध का उत्पादन करती है। सर्वसाधारण एक अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो ऐसे हमने सुना था कि कोई एक व्यक्ति बोल रहे थे कि गाय के बछड़े का जो वजन है उसका जो 10% है उतना वो गाय पीती है, वो बछड़ा पीता है। तो अगर मान लीजिए कि बछड़े का वजन 20 किलो है तो वो 2 किलो दूध पिएगा, और अगर गाय वास्तव में चर रही है, हरियाली में हरी भरी घास खा रही है और गोपालक बड़े प्रेम से उसका पालन कर रहे हैं तो गाय संतुष्ट रहेगी, प्रचुर मात्रा में दूध देगी। आजकल 2-4 लीटर भी देशी गायों से निकालना कठिन है, लेकिन पहले लोग कितना दूध निकालते थे गाय से, क्योंकि गाय खुश रहती थी, हृष्ट पुष्ट रहती थी। तो अगर गाय 5-7 लीटर भी दे और बछड़ा जो है 2-3 लीटर पिए तो कितना बच जाता है। और अगर कोई दोहन न करे उस गाय का तो इस तरह से निकाल लेती है वो गाय। तो वो व्यक्ति तर्क कर रहे थे हमसे कि दोहन करने के लिए जंगल में कौन होते हैं, गाय तो इधर उधर भी घूमते हैं, तो अगर गाय का बछड़ा नहीं पी लेता है तो कौन करता है दोहन, कोई नहीं होता। नहीं करने के लिए भी कोई दोहन हो तो यहां जैसे शहर में भी बेलगाम में जो अपने आप दूध छोड़ देती है गाय, वैसे छोड़ देती होंगी जंगल में। और एक पशु के डॉक्टर बता रहे थे हमको कि अगर गाय ऐसे नहीं छोड़ सकती है दूध और कोई दोहन नहीं करता और बछड़ा नहीं पीता तो गाय को बीमारी हो जाती है, मैस्टाइटिस की बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि गाय का दूध न केवल बछड़े के लिए, हालांकि प्राधान्य बछड़े को देना चाहिए, पहले बछड़े को पिलाना चाहिए और फिर जितना बचे मनुष्य को पीना चाहिए। अगर बछड़े ने ज्यादा पी लिया तो उसको बीमारी हो जाती है, पेट की बीमारी हो जाती है। इसलिए गोपालों को सावधान रहना चाहिए कि ज्यादा पीने को न दे। और कभी कभी गाय भी जो है वो बछड़े को ज्यादा पीने देती नहीं है, वो लात मार के निकाल देती है। हालांकि बछड़े को समझ में नहीं आता कितना पीना चाहिए, बच्चा जैसे बच्चे लोग खाते रहते कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते, तो बछड़ा जो है वो भी हमेशा गाय के थनों के पास जाते रहता, लेकिन गाय समझती है, गाय हटा देती है उसको, जानती है कि और पिएगा तो बीमार हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि गायों का संवर्धन नहीं हो रहा है, संरक्षण नहीं हो रहा है, गाय हृष्ट पुष्ट नहीं है, सही आहार नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है गाय दूध कम देती है, बछड़े के लिए जितना है उतना ही बस हो जाता है। तो आजकल जो बड़े बड़े डेयरी हैं, इधर उधर जो लोग पालन करते हैं, वो क्या करते हैं, गाय के बछड़े को निकाल देते हैं, पहले अपने लिए दूध निकालते हैं, फिर थोड़ा कुछ रहा तो बछड़े के लिए देते हैं, कभी कभी वो भी नहीं। हमने एक दो जगह देखा है कि बछड़े को केवल दूर रखते हैं ताकि गाय देखे उसको, और कई जगह हमने ऐसे भी सुना है कि केवल एक पुतली बनाकर रखते हैं बछड़े का, ताकि गाय समझे कि यह मेरा बच्चा है और फिर वो दूध दे। तो आजकल ये सब चल रहा है, और ये सब बीमारियां हैं। गाय को क्या क्या खिलाते हैं, सब मछली खिलाते हैं और अभक्ष भक्षण कराते हैं गाय से, और फिर नाना प्रकार के ये जो रोग बीमारियां हो जाती हैं गाय के दूध पीने से, मैड काउ डिजीज और नाना अब कितने सारे बीमारियां आ गई। और फिर लोग दोष देते हैं गाय के दूध को, कहते हैं दूध से ये बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, लेकिन वो ये पूछते नहीं है कि गाय को खिलाया क्या आपने पहले, गाय का आपने पालन किया कैसे, इसलिए तो ये सब दूध में वो लक्षण आ गए। जो आपने अंदर दिया गाय के वो दूध से बाहर आएगा। आपने अच्छे ताजी हरी भरी घास दी, जो प्रकृति का एक ऐश्वर्य है, वो अगर आपने गाय को खिलाया तो वो जो दूध आएगा उससे आपको कभी बीमारी नहीं होगी। बल्कि आयुर्वेद में दूध का और दूध के पदार्थों का, पंचगव्य का अति महत्व है। हम जब अभी गए थे एक आयुर्वेद बता रहे थे, हमको बताया उन्होंने, आपको आपके लिए आहार है दूध और घी। दूध में रोज सुबह शाम आप 10-15 मिलीलीटर घी पीजिए, आपके लिए यही आहार है। और बता रहे थे शास्त्र में भी है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो आजीवन केवल दूध पीकर जीते हैं, मतलब दूध में यह शक्ति है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये चमत्कार का आहार है गाय का दूध। लेकिन और वो भी आजकल के गाय ऐसे हैं जो बाजार में मिलता है, किस तरह का गाय है, पैकेट में लिखते हैं गाय का दूध, न जाने क्या है, कैसा गाय क्या दूध है। परंतु गोवर्धन में चरने वाली कृष्ण बलराम की गायें इतनी खुश हुआ करती थी कि प्रचुर मात्रा में भरपूर दूध दिया करती थी गोवर्धन पर्वत के ऊपर। और इसलिए क्या होता था, जो घास के लिए पोषण क्या मिलता था, दूध। देखिए जब घास को खाती थी वो गौएं बड़ी हृष्ट पुष्ट हो जाती थी, और हृष्ट पुष्ट होकर इतना दूध देती थी कि गोवर्धन के जो घास है उसको भी उसका भी पोषण करती थी। केवल पानी नहीं, दूध का पोषण होकर फिर घास भी तगड़े हो जाएंगे ना, फिर गोवर्धन के घास भी ऐसे तगड़े हो जाते, और उस तगड़े घास को खाकर गायें और भी तगड़ी हो जाती, हृष्ट पुष्ट हो जाती और दूध देती। तो यह दशा थी गोवर्धन के घासों की, और इसकी वजह से इस घास के अंदर दूध की वजह से, सूरज के किरणों की वजह से, और श्री कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श की वजह से इनमें कई अद्भुत गुण निर्माण हो गए। पहला गुण, चार प्रमुख गुण है इस घास के। पहला गुण यह है सुगंध, कि ऐसा सुगंध है इस घास के लिए, अद्भुत अतुलनीय सुगंध, और जिससे कि सारे व्रज के गाय आकर्षित हो जाते हैं केवल उस सुगंध से। व्रज के गायों की बात तो दूर है, लेकिन स्वर्गलोक के घोड़े जो हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं। वैसे घोड़ों को भी ऐसे घास खिलाया जाता है, इस प्रकार का अनेक पदार्थ खिलाए जाते हैं घोड़ों को, लेकिन इस प्रकार के विशेष घास भी घोड़े पसंद करते हैं। तो स्वर्गलोक के घोड़े तो कोई साधारण घोड़े नहीं है ना, वो आकर्षित हो जाते हैं, इतना सुगंध है इसका। साथ साथ दूसरा गुण है सुकोमल, बहुत कोमल है, ये मुलायम है ये घास, केवल बरसात के मौसम में नहीं, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में भी, जबकि पानी कम होता है और साधारणतः घास कम हो जाता है और जो होता है वो बहुत उसका धार होता है, लेकिन वृंदावन का गोवर्धन का घास जो है वो कभी भी धार युक्त नहीं होता। उनके होठों को, जिह्वा को या मुंह को काटता नहीं है या चुभता नहीं है वो घास, हमेशा मुलायम रहता है, इसलिए आसानी से गाय जो है उसको चबा सकते हैं, बड़ा स्वादिष्ट रहता है, तो इसलिए सुकोमल। तीसरा गुण है पुष्टिवर्धन, न केवल ये सुगंधित है, न केवल सुकोमल है, परंतु पुष्टिवर्धक भी है, और इस घास को खाकर गवों को कभी थकावट नहीं होती, गवों को कभी रोग नहीं होता, गवों को कभी भूख नहीं लगता, मतलब संतुष्ट रहते हैं हर अवस्था में, और इन तीन गुणों के कारण चौथा गुण उनमें आ जाता है दुग्ध संपक, मतलब जो पशु इस दूध इस घास को खाता है या खाती है वो पर्याप्त मात्रा में दूध प्रदान कर सकती है, तो दूध देने की अधिक मात्रा में अच्छा दूध देने की क्षमता प्रदान करने वाला घास, इस गुण को दुग्ध संपक कहते हैं, इसलिए वृंदावन की गाय जो है इतना श्रेष्ठ दूध देती है, और इस दूध को लेकर यशोदा मैया जो है अनेक गोपियों की सहायता लेकर श्री कृष्ण के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थ तैयार करती हैं, तो दूध का मंथन दही भी बनाती है, मक्खन बनाती है, तरह तरह की मिठाइयां बनाती हैं दूध से इत्यादि, तो दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। प्रभुपाद कहते हैं कि दूध से लाखों लाखों आप आइटम्स बना सकते हैं, पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन हम आजकल भूल गए हैं वो कलाएं, जितनी सारी कलाएं हैं, रेसिपीज हम नहीं जानते, अभी थोड़े बहुत जानते हैं, थोड़ा श्रीखंड बना लिया, संदेश बना लिया, बस दो चार आइटम या 10-15 आइटम भी ठीक है, लेकिन और कितने सारे चीजें हैं जो कि दूध से बनाए जा सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो ये है सुयवसन, और ये तरह तरह के घास जो है ये है रोमांच, तो गोवर्धन के शरीर के रोम जो है वो इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, ये आनंद का लक्षण है, दिव्य आनंद का लक्षण। तो दूसरा जो प्रमोद या दिव्य आनंद का लक्षण है वो है अश्रु, आनंद के आंसू बहाना, पानीय, पानीय सूयवस, तो सूयवस का अभी चर्चा कर ली, अभी पानीय, पानीय मतलब पानी, जल। तो वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितना भी जल है जो बह रहा होता है वो सब गोवर्धन के अश्रु हैं, जो प्रेम की वजह से आनंद में वो बहा रहे हैं, और सबसे प्रमुख है निर्जर, जो झरने हैं जो बहते हैं, और ये झरने जो हैं वो इतने सुंदर तरीके से चलते हैं उन रत्नों से सुशोभित पत्थरों के ऊपर, और एक मधुर संगीत भी आता है उस बहते हुए पानी से। यहाँ केवल मोटरों की आवाज, रेलगाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती, लेकिन गोवर्धन में देखिए क्या वातावरण है, न केवल दिखने के लिए सुंदर, न केवल सूंघने के लिए सुंदर, न केवल चखने के लिए सुंदर, कानों के लिए भी सुंदर, मनोहर, सारे इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं ये गोवर्धन और वृंदावन धाम। तो और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन अपने आप में समर्थ है हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जब जल नीचे आते रहता है तो मानो ऐसे लगता है कि ये गोवर्धन का तरल प्रेम है, तरल रूप में ये बहते जा रहा है गोवर्धन का कृष्ण प्रेम, और इतना सुगंधित है कि इंद्रदेव के नंदन कानन, इंद्रदेव के बगीचों से मुझे जितने फूल हैं उनसे भी ज्यादा सुगंध है इनका, साथ साथ बहुत शीतल। जब कृष्ण बलराम ग्वाल बाल इत्यादि थक जाते हैं या प्यासे हो जाते हैं तो जाके इसका पान करते हैं, और पान करते हैं तो स्वाद कैसा, ऐसा स्वाद जो कि देवता जो अमृत का पान करते हैं उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। और जब ये सब पान करते हैं इसको प्राय उन्मत्त हो जाते हैं, जैसे इंद्र आदि सोमरस का पान करके थोड़ा उन्मत्त हो जाते हैं, वैसे ग्वालबाल कृष्ण इत्यादि बलराम इस पानी का पान करने के बाद वो प्राय उन्मत्त हो जाते हैं, और फिर कोई लौटने लगते हैं, कोई हंसने लगते हैं, कोई नाचने लगते हैं। तो ये है जल वृंदावन के झरनों का, एक ऐसा अद्भुत पेय है ये, साधारण यहाँ के जल के समान नहीं। दूसरी बात, जो वहां पर सरोवर है गोवर्धन में, आजकल तो सरोवर गोवर्धन के बाद आज भी हैं कितने सारे सरोवर, आप में कितने भक्तों ने गोवर्धन की परिक्रमा की है, तो आप सबने देखे होंगे कितने सारे सरोवर है वहां पर, शायद एक दो में आपने बैठकर स्नान भी किया होगा। तो ये सारे सरोवर जो हैं वो भी ग्रीष्म ऋतु में गर्म समय में वो बहुत आनंद देते हैं कृष्ण बलराम और उनके गायों को। ऐसे ग्रीष्म ऋतु में भगवान कृष्ण इस गौओं को इस जल में अंदर भेजने में बहुत आनंद लेते हैं। फिर गौएं अंदर चली जाती हैं, फिर उनके पीछे पीछे कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल भी जाते हैं और जल में जाकर उनको बहुत अच्छा लगता है। वहां शीतल जल में स्नान करते हैं, तैरते हैं, साथ साथ में कई खेल खेलते हैं वहां पर, साथ साथ कभी मछलियां होती है तो मछलियों के पीछे पीछे जाते हैं, मछलियों का पीछा करते हैं, कभी मेंढक होते हैं तो मेंढकों की तरह कूदने लगते हैं, तो कभी कभी वैसे बहुत ही हास्य के जो ध्वनियां हैं वो निकालते हैं अपने अपने मुख से। कोई किसी पशु की नकल करता है, कोई पक्षी की नकल करता है, कोई विचित्र आवाज निकालेगा अपने मुंह से, जैसे बच्चे करते हैं, ठीक उसी तरह से यहां पर ऐसे जल में सरोवर में कृष्ण बलराम और उनके मित्र रमण किया करते थे। ऐसे अद्भुत दृश्य जिसकी कल्पना भी बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी नहीं कर सकते। वही योगी ज्ञानी लोग केवल निराकार ब्रह्म के ऊपर शांति प्राप्त करने के लिए बैठ जाते हैं, कितना कष्ट लेते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततम पतं त्यदो नाद्यते युष्मदं क्रयः। वो सोचते हैं कि हमारे कष्ट लेने से हम बहुत परम पद को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु क्या है, पतंती अधः अनादृत युष्मदं क्रयः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरादर किया है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को उनके व्यक्तित्व को नहीं मानते हैं, इसलिए अनादर हो गया, इसलिए निराकार से भी उनका पतन हो जाता है, उसमें आनंद नहीं मिलता। तो ये सब लोग क्या कल्पना कर सकते हैं कि वही परब्रह्म जो कि उस निराकार के स्रोत हैं जिसकी उपासना वो करते हैं, वही परब्रह्म श्री कृष्ण आज इस प्रकार से साधारण बच्चे की तरह वो सरोवर में ऐसे खेल खेल रहे हैं। वैकुंठ में भगवान का भाव गंभीर होता है और निराकार की बात ही दूर है, लेकिन यहां पे देखिए कैसा भाव है भगवान का। तो गोवर्धन जो है कितना भाग्यशाली है कि इन सब लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, बल्कि इन लीलाओं को एक वातावरण अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार से कृष्ण बलराम उन सरोवरों में खेल रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ कई नदियां भी हैं, साथ साथ और भी ऐसे जल है जो कि पृथ्वी के भीतर से आता है, कभी गर्म कभी ठंड, स्प्रिंग्स जो बोलते हैं, ये भी तरह तरह के निर्जर होते हैं। और इस प्रकार से आचार्य ने वर्णन किया है कि ये हैं सब गोवर्धन के अश्रु, उनके प्रेम के दिव्य आनंद के अश्रु। तो ये हो गया पानीय, पानीय सूय वसत। साथ साथ में और भी एक आनंद का लक्षण है गोवर्धन के अंदर और वो है स्वेद, पसीना। अब वास्तव में इस दुनिया में भी लोगों को पसीना आता है, हम सबको आता है पसीना, लेकिन दिव्य आनंद में भी पसीना आता है। तो भक्ति भाव में आकर पसीना आना, इसका विश्लेषण भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने किया है। वो कहते हैं कि दिव्योन्माद में कभी कभी जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है तो पसीना आता है, कभी भक्त को गुस्सा आता है भक्ति भाव में तो भी पसीना आता है, या व्यक्ति अति हर्षित हो जाता है उस समय भी पसीना आता है। तो श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं हर एक श्रेणी के लिए। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में एक सेवक हैं रक्तक, और एक बार रक्तक जो है किसी काम से जा रहे थे यावत की ओर, यशोदा मैया ने उनको भेजा था। यशोदा मैया जो है सारे छोटे ग्वाल बालों को कृष्ण की सेवा में लगा देती हैं कि चलो ये कृष्ण के लिए ये बनाना है, ये चाहिए, तुम वहां जाकर लेकर आओ, या वो संदेश वहां पर दे दो और जल्दी से आ जाओ। तो ऐसे ही एक कार्य के लिए माता यशोदा ने रक्तक को भेजा था और रक्तक यावत की ओर जा रहा था। यावत क्या है, कौन सा स्थान है यावत, यावत का महत्व क्या है, कौन रहते हैं वहां पर? राधा रानी वहां पर रहती है। राधा रानी और अन्य गोपियां विवाह होने के बाद यावत में चली गई। उसके पहले कहां पर थी मायके, कहां है राधा रानी का, बरसाने में। राधा रानी का जन्म कहां हुआ, रावल में। रावल में जन्म हुआ और उस समय श्री कृष्ण गोकुल में थे, वृंदावन में। लेकिन जब नंद महाराज और अन्य गोपों ने सोचा कि यहां बहुत असुर आ रहे हैं, तो वो गोकुल से या वृंदावन से नंदग्राम चले गए। वैसे गोकुल और रावल पास पास है, तो जब दूर चले गए नंद महाराज ब्रजवासियों को लेकर, तो वृषभानु महाराज जो राधा रानी के पिता है, उन्होंने सोचा हमें भी जाना चाहिए नंदगांव के पास, तो वो जाके बसे बरसाना में। तो जब श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ, तो विवाह के बाद उनके पति के घर, अभिमन्यु के घर, वो रहने लगे यावत में। ये अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु नहीं है, तो उनके घर चले गए यावत में। तो इस प्रकार से यावत चलते चलते रक्तक ने अभिमन्यु को देखा। अब अभिमन्यु जो है वो हमेशा श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में आते हैं, आखिर है पति ना, आखिर है वो पति। लेकिन ये भगवान और वृंदावन धाम की दिव्य लीला है, ये तथाकथित ऐसे विवाह से वो जो परकीय भाव है कृष्ण गोपियों का वो बढ़ जाता है, वो और मीठा हो जाता है। तो रक्तक ने देखा अभिमन्यु को, बहुत गुस्सा आया और भर्त्सना करने लगा रक्तक अभिमन्यु की, क्योंकि अभिमन्यु उसके प्रिय सखा कृष्ण के लीलाओं में अड़चन बन गया है। लेकिन रक्तक एक बात को नहीं जानता था, क्या कि अब ये जो अभिमन्यु था वो अभिमन्यु नहीं था वास्तव में, वो कृष्ण ने अभिमन्यु का वेश धारण किया था। क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि मैं जाकर, अगर मैं कृष्ण अपने रूप में गया तो जटिला जो है राधा रानी की सास मुझे छोड़ेंगी नहीं वहां पर, तो मुझे अभिमन्यु का वेश धारण करना पड़ेगा, ऐसे अक्सर किया करते थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण अभिमन्यु के वेश में जा रहे थे, जब रक्तक ने देखा उनको, रक्तक ने सोचा कि ये अभिमन्यु है, तो बहुत भर्त्सना की। तो ये भर्त्सना जो है ये रक्तक के प्रेम का एक प्राकट्य था। तो श्री कृष्ण ने समझा कि कितना रक्तक मुझसे प्रेम करते हैं, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो भी हंसने लग गए और उनकी बांसुरी निकल आई। तो रक्तक ने देखा, अरे ये तो अभिमन्यु नहीं है, कृष्ण है। तो उसमें बहुत भयभीत हो गए, अरे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सेवा भाव में थे वो, इसलिए उनके शरीर पे पसीना छूट गया। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं ये एक लक्षण है स्वेद का, जो कि भय से उत्पन्न होता है। दूसरा क्रोध से, जब इंद्रदेव ने ब्रज के ऊपर आक्रमण किया और मूसलधार वर्षा, सृष्टि के प्रलय के समान की वर्षा बहाने लगे, तो उस समय गरुड़ जी आए। गरुड़ जी भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके वाहन हैं। तो गरुड़ जी ने देखा कि क्या हो रहा है, और फिर कृष्ण भगवान ने जाकर गोवर्धन को धारण किया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। तो उस समय इंद्र के इस कार्य को देखकर गरुड़ को बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि पसीना छूट गया उनके शरीर से, और ये पसीना जो है इस बरसात में मिलकर एक गोवर्धन के ऊपर आया। तो खैर ये भी क्रोध से पसीना आने का एक उदाहरण है। और दूसरा, तीसरा है हर्ष से। बताया जाता है कि एक बार जब श्रीमती राधा रानी ने ठंडी के मौसम में श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो इतनी हर्षित हो गई कि हालांकि बाहर बहुत ठंडी थी फिर भी पसीना छूट गया। तो ये हर्ष की वजह से पसीना छूटना। तो ये जो स्वेद है जो गोवर्धन में है वो किस वजह से है, भय से नहीं, क्रोध से नहीं, हर्ष की वजह से है। और ये क्या है पसीना, गोवर्धन का पसीना क्या हो सकता है, उनके जो दिव्य शरीर के ऊपर जो तुषार है, तुषार जानते हैं ना, ड्यू दव, मराठी में जो दव कहते हैं, तुषार या शबनम कहते हैं उसको। तो ये तुषार, ये जो दव जो है, ये जब सारे शरीर पे रह जाता है गोवर्धन के, तो ये गोवर्धन का पसीना है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से ये दव जो है ये पसीना छूट जाता है गोवर्धन के ऊपर, और एक प्रकार का स्वेद है, और वह स्वेद क्या है ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बलराम उनके चरण कमल से स्पर्श करते हैं गोवर्धन को और इतने सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट करते हैं, तो गोवर्धन इस स्पर्श से और इन लीलाओं के दर्शन से पिघल जाते हैं। गोवर्धन मतलब उनके ऊपर कितने सारे पत्थर हैं, तो ये पत्थर ही पिघल जाते हैं। साधारणतः जो धातु होते हैं या पत्थर होते हैं वो बहुत ही ऊंचे तापमान में पिघलते हैं, लेकिन ये साधारण तापमान में पिघलते थे, और आज भी पिघले हुए इस कि गोवर्धन ऐसे पिघलते थे इसका इसका प्रमाण है। जब ये पत्थर पिघल जाते थे तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के चिन्ह जो है उसमें रह जाते थे, और आज भी श्याम वन नाम का एक जगह है कुसुम सरोवर के पास, गोवर्धन परिक्रमा के पथ में आता है, थोड़ी दूरी पर है, तो यहां पर एक पत्थर है जहां पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है अभी भी। और ये इसलिए हुआ कि एक बार गोवर्धन ने दर्शन किया कि श्याम वन में श्री कृष्ण ने राधा रानी का वेश धारण किया और राधा रानी ने श्री कृष्ण का वेश धारण किया, और गोपियां भ्रमित हो गईं, कृष्ण को राधा रानी समझकर राधा रानी को कृष्ण समझकर बोलने लगी, तो वहां पे बिल्कुल जैसे कॉमेडी कहते हैं कॉमेडी हो गया वहां पर, और फिर राधा कृष्ण दोनों जो है वो इस खेल को आगे बढ़ाते रहे, अंत में गोपियों को पता चल गया कि कौन कृष्ण असली और कौन असली राधा रानी है। तो गोवर्धन ने जब ये सारी लीला देख ली तो उनका जो पत्थर है वो पिघल गए और इस प्रकार से कृष्ण के चरण चिन्ह वहां पर आ गए। दूसरी बात, दान घाटी नाम का एक जगह है, दान घाटी में भगवान ने गोपियों से कर मांगा था, जैसे यहां सरकार जगह जगह टोल नाका लगाती है ना, जकात नाका, ये नाका, वो नाका, नया हाईवे बना दिया तो हाईवे में प्रवेश करने के पहले कोई पैसा देना पड़ता है, टोल देना पड़ता है, तो जब गोपियां जाना चाहती थी अपना मक्खन दूध इत्यादि लेकर, तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ खड़े हो गए लाठी लेकर कि मैं कस्टम्स ऑफिसर हूं, आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा मुझे, मैं राजा कंस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इस लीला का विस्तार में वर्णन कभी और करेंगे। तो क्या वो कर वसूल किया करते थे, गोपियां देने के इच्छुक नहीं थे लेकिन जबरदस्ती फिर वो कर ले लेते थे। तो ये जो लीला वहां पर हुई, और वहां पे दोनों राधा रानी और कृष्ण के चरण चिन्ह है पत्थर में। दो तीन दिन पहले हमने वर्णन किया था कि गोवर्धन के ऊपर डावकी दाऊ जी का मंदिर है, डावका दाऊ जी, बलराम जी वहां काले है, वैसे बलराम जी का वर्ण सफेद है लेकिन यहां पर वो काले हैं। कैसे हो गए काले, क्योंकि वो रासलीला देख रहे थे, ऊपर थे गोवर्धन पर्वत के, अचानक उन्होंने गोवर्धन के पास होने वाले रासलीला को देखा और देखते देखते विस्मित हो गए, चमत्कार लगा उनको, देखते रह गए और ऐसे अपने घुटनों से देख रहे थे, देखते देखते शरीर काला हो गया। और आज भी वो मंदिर है जहां बलराम जी का विग्रह है और बलराम उसी मुद्रा में है, दाऊ का दाऊ जी मंदिर कहते हैं। तो यहां भी देखते देखते बलराम जी के मुकुट पिघल, वो पत्थर पिघल गया, उसका चिन्ह भी उस पत्थर में है। साथ साथ इंद्रकुंड, इंद्रकुंड में ऐरावत जो कि इंद्रदेव के हाथी हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, और उस स्थान में गोवर्धन ये सब दृश्य देखे, तो उस ऐरावत हाथी के पद चिन्ह भी वहां पर है। तो जगह जगह पर गोवर्धन में ऐसे देखा जाता है कि गोवर्धन के पत्थरों के भगवान कृष्ण, तो ये पत्थर पिघल जाते थे और कभी कभी मिट्टी के समान, जब पानी मिट्टी के ऊपर गिरता है वो बहने लगता है, उसी प्रकार से ये बहने लगते थे। इस प्रकार से स्वेद, गोवर्धन का स्वेद या पसीना, उनका तुषार और उनके पिघले हुए पत्थर, ये पत्थर अन्य तरीकों से भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वैसे पत्थरों के ऊपर चलना काफी कष्टदायक होता है, लेकिन जब श्री कृष्ण बलराम उनके गाय और ग्वाल बाल चलते थे तो ये पत्थर कपास के समान मुलायम हो जाते थे, और अगर कोई धार वाला था तो वो धार मिट जाता था और केवल वो पुष्प के समान कोमल हो जाते थे। और ऐसा कोई नहीं था जहां बिल्कुल किसी को चुभे, किसी को लगे, नहीं, बिल्कुल आराम से चल सकते थे। गर्मी में ये पत्थर शीतल होते थे, ठंडी के समय में इनमें एक उपयुक्त गर्माहट आ जाती थी। इस प्रकार से इन पत्थरों ने भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। तो इस प्रकार से आचार्यों ने गोवर्धन के प्रमोद का वर्णन किया है। तो संक्षिप्त रूप में अगर कहा जाए तो गोवर्धन का प्रमोद किस लिए था? एक कि वो अच्छे भक्त थे, उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में ही इतना आनंद आता था। दूसरा कि श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनकी प्रसन्नता को देखकर भी और आनंद हुआ गोवर्धन को। साथ साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श उनके ऊपर हुआ, श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर लीलाएं वहां रचाई, इस स्पर्श से, इस दर्शन से और भी आनंद हुआ। श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा उन्होंने की। इस प्रकार से गोवर्धन का प्रमोद का वर्णन हुआ है। और फिर आगे पानी सुयवस कंदर, कंदर मतलब गुफाएं। गोवर्धन के अंदर भी कई गुफाएं हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अब ये गुफाओं का दर्शन हम शायद नहीं कर सकते, परंतु अवश्य हैं। तो ये गुफाएं जो हैं, ये कृष्ण बलराम और उनके साथियों को बहुत आनंद दिया करते थे। किस प्रकार से? क्योंकि ये गुफाएं उनकी लीलाओं के लिए स्थान हैं। वहां पर जाकर गर्मियों में, जब दोपहर की गर्मी ज्यादा हो जाती थी, तो सब वहां जाकर विश्राम करते थे। ठंडी के समय वहां जाकर वो आराम से बैठते थे भी, वहां ज्यादा गर्मी होती थी ठंडी के समय। और कभी जब थक जाते थे तो आराम से कृष्ण और बलराम अंधेरे किसी गुफा में जाकर लेट जाते थे, और वो पत्थर बिल्कुल ऐसे मुलायम शैया हो जाते कि आराम से दोनों लेट जाते। इस प्रकार से ये गुफाएं जो है इनकी सेवा करते थे। जब कृष्ण बलराम इन गुफाओं में सो जाते थे तो अच्छे अच्छे सपने देखते थे उनके खेल क्रीड़ा के बारे में, और फिर उठ के फिर से उत्साह से उनकी क्रीड़ा में जारी रह जाते। और एक अद्भुत बात यह है कि इन गुफाओं के अंदर अतुलनीय ऐश्वर्य था जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि वहां के जो शैया हैं, वहां के जो आसन हैं, दीप हैं, दर्पण हैं, वो सब अनमोल रत्नों से बने हुए हैं। अब हम पूछेंगे कि ये सब तो दंत कथा होनी चाहिए, अवश्य सब काल्पनिक होनी चाहिए, हमने जब गोवर्धन का दर्शन किया तो हमें केवल काले काले बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़े, हम जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो कितने सारे कांटे चुभते रहे हमको, बहुत कठिनाई हुई, बार बार रुकना पड़ा और पैरों के तलवों से कांटे निकालने पड़े। तो ये कैसे हो सकता है कि इतने अनमोल रत्नों से बने हुए हैं ये सब जगह? क्योंकि वास्तव में हमारी वो आंखें नहीं हैं। गोवर्धन का ऐश्वर्य, वृंदावन का ऐश्वर्य केवल उन लोगों के लिए है जो कि देख सकते हैं, जिनकी आंखें हैं। वास्तव में हमारे मंगलाचरण प्रार्थनाओं में हम ये अक्सर कहते हैं, दिव्याद वृंदारण्य कल्पत्रमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठाली भी सेव्यमानौ स्मरामि। मैं उन श्री राधा कृष्ण का स्मरण करता हूं जो कि दिव्य वृंदावन धाम में है। दिव्याद वृंदारण्य, दिव्य मतलब वो चिंतामणि धाम है, कल्पद्रुम अथ, कल्पद्रुम मतलब कल्प वृक्ष, द्रुम शब्द मतलब वृक्ष। वृंदावन में कई कल्प वृक्ष हैं और इस कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थौ, इन कल्प वृक्षों के नीचे एक आसन है, मंदिर है, रत्नों से बनाया हुआ और अति सुंदर है, श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थौ। और इस सिंहासन में जो कि रत्नों का बना हुआ है और जो कि कल्प वृक्ष के नीचे है अधः, वहां पर श्रीमत राधा अति सुंदरी श्री राधा रानी है, श्रील गोविंद देवो गोविंद श्री कृष्ण के साथ, प्रेष्ठा आलिभिः सेव्यमानो, प्रेष्ठा मतलब सर्वश्रेष्ठ, प्रेष्ठा भी राधा रानी का नाम है, सर्वश्रेष्ठ। आली आली मतलब जो सखियां हैं, गोपियां हैं, आलिभि प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो। तो इस रत्न सिंहासन पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ बैठी हैं और उनको घेर के बैठी हैं सारी आली मतलब गोपियां सेव्यमानो उनकी सेवा करते हुए। तो ये दृश्य है वृंदावन का, रत्नों से बनाए हुए मंदिर आसन इत्यादि, लेकिन दिव्य दृष्टि से ये सब दिखा जा सकता है। उसी प्रकार से श्रीनिवास आचार्य भी षड गोस्वामी अष्टक में वृंदावन का वर्णन करते हैं।
कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूरा कुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजत जीवार्थ दौयौ मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ।
श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के निकट के शिष्य षड गोस्वामियों के का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वृंदावन धाम का वर्णन करते हैं। कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले, वहां पे वृंदावन में कूजने की आवाज कू 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 की आवाज सुनाई पड़ती है। कौन से पक्षियों की? कूजत कोकिल, कोकिल पक्षी की, हंस पक्षी की, सारस पक्षी की और मयूर, ये सारे पक्षियां कू 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 करके बड़ा एक रम्य वातावरण है वहां पर, सुनने के लिए बड़ी अच्छी ध्वनि है ये। साथ साथ वहां पर कई विटप वृक्ष हैं, वृक्ष के लिए भी संस्कृत में कई शब्द हैं, जैसे द्रुम अभी हमने सुना और एक है पादप। पादप मतलब क्या है कोई बता सकते हैं? जो पैर से पीते हैं पानी, हम लोग मुंह से पीते हैं ना, लेकिन वृक्ष जो है अपने जड़ों से पीते हैं पानी, इसलिए उनका पादप प मतलब पीते हैं। तो पादप उसी तरह से विटप, तो वृक्षों को कहते हैं विटप। तो यहां वृंदावन के विटप जो है जो कैसे हैं, नाना रत्न निबद्ध मूल, उनके मूल जो हैं वो घिरे हुए हैं, निबद्ध बंधे हुए हैं, किससे? नाना रत्न। तो बाहर के रत्नों की बात तो दूर है, लेकिन हरेक कल्प वृक्ष के जड़ जो हैं वो नाना प्रकार से अनमोल रत्नों से बद्ध हैं। श्री युक्त वृंदावने, तो ऐसे ऐश्वर्य से युक्त है श्री वृंदावन। अभी हम जाते हैं तो ऐसे कुछ देखते नहीं है, लेकिन सारे वैष्णव आचार्य ऐसे वर्णन करते हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते। राधा कृष्णम अहर्निशम प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा। तो अभी षड गोस्वामियों का वर्णन करते हैं कि राधा कृष्णम अहर्निशौ प्रभजतौ, अहर मतलब दिन, निशौ मतलब रात, प्रभजतौ प्रकृष्ट रूपेण भजताम, बड़ी तीव्रता से जो दिन रात भजन करते हैं राधा कृष्ण के, और साथ साथ जीव अर्थ जीवों के कल्याण के लिए हमेशा खुशी से प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, यौ मुदा मुदित रहते हैं सारे प्राणियों के लिए कल्याण प्रदान करने के लिए। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य वृंदावन धाम के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। श्री युक्त वृंदावने, सब जगह अनमोल रत्न हैं, तो गोवर्धन के भीतर भी ऐसे रत्न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साथ साथ हम ये भजन गाते हैं ना हमेशा, वृंदावन रम्य स्थान, तो यहां देखिए यहां भी वर्णन आता है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। कई मंदिर हैं वृंदावन में, किससे बने हुए? पत्थरों से बने हुए? सीमेंट और ईंटों से बने हुए? नहीं, रत्नों से सुशोभित, रत्नों से बने हुए मंदिर। केवल रत्नों से सुशोभित नहीं, रत्नों से बने हुए मंदिर हैं। साथ साथ आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली कोले, वहां पर सब जगह यमुना के जल से घिरा हुआ है ये धाम, वहां पर हंस केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ताहे शोभे कनक कमल, कनक एक सोने का कमल है जिसके बीच में राधा कृष्ण विराजे हैं इत्यादि। और तार मध्य रत्नासने बोसी आछेन दुईजन श्याम संगे सुंदरी राधिका। और इस कनक कमल में रत्नासन है, रत्नों से बने हुए आसन है, जिसमें राधा कृष्ण विराजे हुए हैं। इस प्रकार से जगह जगह हम देखेंगे, कई केवल आपको तीन चार उदाहरण दिए, ऐसे ऐसे जगह जगह जब भी वृंदावन का वर्णन आता है तो ऐसे ही पढ़ने में दिखने में सुनने में आता है कि इतना ऐश्वर्यशाली है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि वृंदावन को तो हम माधुरी धाम कहते हैं और वैकुंठ को ऐश्वर्य धाम कहते हैं, क्योंकि सारा ऐश्वर्य वैकुंठ में है, वैकुंठ में माधुर्य कम मात्रा में है, लेकिन वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं माधुर्य है। तो यहां ऐश्वर्य का वर्णन सुनते हैं तो एक विरोधाभास लगता है, ये कैसे हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा संवाद है, एक लीला जो आपको चैतन्य चरितामृत से हम सुनाना चाहेंगे। और ये सुंदर संवाद तब हुआ जब वृंदावन में हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा था। अब ये हेरा पंचमी का उत्सव जो है, ये रथ यात्रा के उत्सव के 5 दिन बाद होता है, पंचमी में, पंचमी की तिथि पर। और हेरा, हेरा मतलब क्या है? देखना। कौन देखती है? लक्ष्मी देवी देखती है। किनको देखना चाहती है? जगन्नाथ को। अब ये हेरा पंचमी उत्सव है क्या? आप तो जानते हैं कि रथ यात्रा के समय जगन्नाथ भगवान उस मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर वो गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। जगन्नाथ का मंदिर जो है वो द्वारका के समान है, ऐश्वर्य युक्त, और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन के समान है। तो जगन्नाथ भगवान गुंडीचा को छोड़कर, जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर जो नीलाचल कहा जाता है वो गुंडीचा में आते हैं, जो कि सुंदराचल कहा जाता है। और इस प्रकार से जब वो चले जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो लक्ष्मी देवी को बहुत विरह होता है। जगन्नाथ बोल के गए हैं मैं कल ही आऊंगा, लेकिन नहीं आते। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, फिर लक्ष्मी देवी सह नहीं कर पाती, 5वें दिन कहती हमको जाना चाहिए, कहां गए हमारे पति छोड़कर हमको, ऐसे कहां जाती। तो लक्ष्मी देवी गुस्से के भाव में आती है, और जब तैयारी होकर आती है तो हेरा पंचमी का उत्सव होता है। तो लक्ष्मी देवी अपने सारे सहेलियों के साथ, अपने सेवकों के साथ निकलती हैं, बड़े ठाट से, ऐश्वर्य से, आखिर वो लक्ष्मी देवी है ना। सारे आभूषण उनके, उनके सेविकाओं के ऊपर भी सारे आभूषण, बहुत ही महंगे वस्त्र इत्यादि, धूमधाम से निकलती हैं। वाद्य बजाने वाले लोग हैं, आगे पीछे नौकर चाकर, बड़ा उत्सव मनता है, मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में। आप में से किसी ने देखा है हेरा पंचमी का उत्सव? तो खैर, जब क्या होता है, फिर लक्ष्मी देवी वहां पर आती हैं, और वहां जो जगन्नाथ के सेवक होते हैं गुंडीचा मंदिर में, फिर लक्ष्मी देवी की जो सेविकाएं होती है वो उनको पकड़ते हैं, बहुत मारते हैं उनको, लाठी लेकर मारते हैं, और फिर लक्ष्मी देवी के चरणों में ले आते हैं और पूछते हैं कहां गए तुम्हारे स्वामी, हमारी स्वामिनी को छोड़कर चले गए, अभी तक आए नहीं। फिर उनको चोर की तरह उनको डांटते हैं, फिर लक्ष्मी देवी को उनको चेतावनी देती हैं, फिर वो कहते हैं हम बहुत गलती हुई, कल आपको अवश्य हमारे स्वामी को आपके सामने लाएंगे, लाएंगे। और फिर जो वो लक्ष्मी देवी की सेविकाएं हैं, दासी हैं, वो जाके रथ को पीटती हैं छड़ी से लेकर, ये रथ लेकर गया हमारी स्वामिनी से जगन्नाथ भगवान को, तो रथ के ऊपर बहुत क्रोध निकालती है। तो ये लीला होती है हेरा पंचमी। तो हेरा पंचमी के समय चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर गए थे, और अपने भक्तों के साथ में जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने प्रश्न किए स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। उस समय राजा प्रताप रुद्र ने आदेश दिया था कि बड़े धूमधाम से इस साल हेरा पंचमी मनाया जाना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल प्रसन्न हो जाने चाहिए इस उत्सव से। तो ऐसी व्यवस्था हुई जैसे पिछले कई सालों से नहीं हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा कि अरे स्वरूप, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बड़े संतुष्ट रहते हैं, कई लीलाएं करते हैं, और साथ साथ रमण करते हुए अपने औदार्य का भाव भी प्रकट करते हैं द्वारका में, मतलब यहां नीलाचल में जगन्नाथ मंदिर में, जो कि द्वारका के समान है। परंतु इस साल इस स्थान को छोड़कर साल में एक बार वो वृंदावन चले जाते हैं, अर्थात गुंडीचा चले जाते हैं। और वहां जब जाते हैं तो लक्ष्मी देवी को साथ में नहीं लेकर जाते, ऐसा क्यों? वास्तव में जगन्नाथ की इच्छा है वृंदावन जाना, और रथ यात्रा तो केवल एक बहाना बनाते हैं। वो रथ यात्रा के बहाने वो निकलते हैं ताकि वो वृंदावन में जाके थोड़े दिन वहां रह सकें और श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ लीला कर सकें। देखो ये जितने भी उद्यान है गुंडीचा मंदिर में, ये सब वृंदावन के उद्यान है। तो जगन्नाथ वहां उस स्थान द्वारका को छोड़कर यहां पर क्यों आते हैं, लक्ष्मी देवी को साथ में क्यों नहीं लेकर आते? परूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, वैसे जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को इसलिए नहीं ले जाते हैं रथ यात्रा में, क्योंकि गुंडीचा वृंदावन है और वृंदावन में केवल गोपियों के लिए प्रवेश है। जो गोपी भाव में है वही वहां पे भगवान कृष्ण की सेवा कर सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी का भाव वैकुंठ का भाव है, वो गोपियों का भाव स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उनको वहां अनुमति नहीं है, वो कृष्ण लीला में वहां शामिल नहीं हो सकती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे प्रश्न किया, तो फिर भी अगर जगन्नाथ वहां जाना चाहते हैं तो इसमें दोष क्या है, फिर लक्ष्मी देवी गुस्सा क्यों हो जाती है? तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि ये तो स्वाभाविक है कि कई स्त्री का पति चले जाए कहीं दूसरे जगह तो गुस्सा हो जाता है, ये एक मान का प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ बात करते करते उस समय लक्ष्मी देवी अपने साथियों के साथ वहां पर चली आई। एक पालखी में बड़ा ऐश्वर्यशाली दृश्य था वो, और बड़े क्रोधित भाव में थी, और जगन्नाथ भगवान के सेवकों को गिरफ्तार किया गया, उनको बांधा गया रस्सी से, और फिर लक्ष्मी देवी के चरणों में लाकर उनको गिराया गया, प्रणाम करो हमारे स्वामिनी को। तो सब ने डर डर के कांप कांप के प्रणाम किया, और ये सब फिर लक्ष्मी देवी और उनके सेविकाओं ने बहुत डांटा उनको, गंदे गंदे शब्द कहे उनसे, तुम ऐसे हो वैसे हो, हमारी स्वामिनी से उनके स्वामी को छीन कर लेकर गए। तो ये सब जब हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जो है वो हंसने लगे, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुंह पे हाथ रखा क्योंकि वो इतना हंसी दिखाना नहीं चाहते थे सब। तो सबको अच्छा मनोरंजन हो रहा था, वहां सब देख रहे थे। और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि ऐसा मान लक्ष्मी देवी प्रकट कर रही हैं जिसको हमने कभी नहीं कहीं नहीं देखा है। हाँ हमने सुना है कि द्वारका में सत्यभामा कभी कभी ऐसे मान दिखाती है, लेकिन इस तरह नहीं, वृंदावन की गोपियां भी ऐसे कभी कभी मान दिखाती हैं, लेकिन यहां लक्ष्मी देवी इतना मान दिखा रही है कि अपने ऐश्वर्यों से युक्त होकर अपने पति की भर्त्सना करने के लिए तैयार हो गई है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन में कैसे मान का प्रदर्शन करती हैं गोपियां, इसका जरा वर्णन करो। काफी विस्तार का वर्णन है, आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अच्छी तरह से विस्तार में वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, आलिंगन किया स्वरूप दामोदर का, और उस समय श्रीवास ठाकुर बोलने लगे। श्रीवास ठाकुर वास्तव में नारद जी के अवतार माने जाते हैं चैतन्य लीला में, तो वो वैकुंठ भाव में है, जानबूझकर वैकुंठ भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहने लगे, जानबूझकर वो स्वरूप दामोदर के साथ थोड़ा मजाक करना चाहते थे, तो जानबूझकर कहने लगे, देखो देखो मेरी लक्ष्मी देवी कितनी ऐश्वर्यवान है और तुम्हारे वृंदावन का ऐश्वर्य ये क्या है, थोड़े फूल हैं, थोड़े कंदमूल हैं, थोड़े लकड़ियां हैं, थोड़े धातु हैं, थोड़े मोर पंख हैं, गुंजमाला है, यही तुम्हारे वृंदावन का ऐश्वर्य। और लक्ष्मी देवी चिंतन कर रही हैं कि मेरे स्वामी इतने ऐश्वर्य को, मेरे द्वारका के वैकुंठ के ऐश्वर्य को छोड़कर वो वृंदावन क्यों चली गई। और देखो श्रीवास ठाकुर कहने लगे, लक्ष्मी देवी की सेविकाएं कह रही हैं कि तुम्हारे स्वामी वो तो वास्तव में विदग्ध शिरोमणि है, विदग्ध मतलब जो दक्ष है, एक्सपर्ट है, वो विदग्ध शिरोमणि है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ऐश्वर्य को छोड़कर जंगल में जा रहे हैं, ये कोई अकलमंद की बात तो नहीं है। तो इस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया, दंड दिया इत्यादि। और उस समय श्रीवास ठाकुर कहने लगे कि देखो मेरी लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य वर्णन से बाहर है। कोई चाहे भी तो वैकुंठ के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे गोपियां वो केवल दूध को उबालती हैं, मंथन करती हैं, मक्खन बनाती हैं, दही बनाती हैं, लेकिन मेरे जो स्वामिनी है लक्ष्मी देवी, वो तो रत्न सिंहासन पर बैठी हुई है। देखो तुम्हारे वृंदावन में और मेरे वैकुंठ में, मेरे द्वारका में कितना अंतर है। तो चैतन्य महाप्रभु हंसकर बोलने लगे, अरे श्रीवास, अब लगता है कि नारद जी का भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया है, लेकिन इस ऐश्वर्य के जाने में बेचारे स्वरूप दामोदर क्या जाने, वो तो एक सरल से ब्रज वृंदावन के भक्त हैं। ऐसे वृंदावन के भक्तों को ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो वो तो केवल अपनी सेवा से, भक्ति से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन स्वरूप दामोदर चुप नहीं रहे, बोलने लगे, अरे श्रीवास ठाकुर, क्या आप भूल गए हैं कि वास्तव में दिव्य वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है? तो स्वरूप दामोदर क्या वर्णन करते हैं, आइए हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में। स्वरूप कहे श्रीवास सुनो, सुनो सावधाने, वृंदावन संपत्तो मन नहीं पड़े मने। स्वरूप कहे, स्वरूप कहने लगे, श्रीवास सावधानी से सुनो, वृंदावन संपद, वृंदावन का संपद्य ऐश्वर्य तो मन नहीं पड़े मने। क्या तुम्हें मन में नहीं आ रहा है, तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा? वृंदावन साहजी का यही संपत सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तारा एक बिंदु। सहज रूप से वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो एक सिंधु या सागर के समान है, और इसकी तुलना में द्वारका और वैकुंठ की संपत्ति जो है एक बिंदु, एक बूंद के समान है मात्र। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, कृष्ण जहां धनी तहां वृंदावन धाम। तो श्री कृष्ण तो परम सत्य हैं, भगवान हैं। भगवान मतलब सारे ऐश्वर्यों से युक्त हैं, और इसलिए उनके सारे ऐश्वर्य पूर्णता में केवल वृंदावन में ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और अन्य केवल भगवान है, जैसे विष्णु, नारायण, मत्स्य, नरसिंह, वो सब भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान, मूल भगवान, अवतारी, जिनसे अन्य भगवान उत्पन्न होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वृंदावन स्वयं धाम है। अन्य सब धाम है, वैकुंठ है, अयोध्या है, द्वारका है, ये सब धाम है, लेकिन वृंदावन स्वयं धाम है। जिस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं भगवान, उस प्रकार से वृंदावन स्वयं धाम। तो जैसे भगवान के विविध रूपों में तरह तरह के ऐश्वर्य प्रकट हैं, परंतु उन ऐश्वर्यों को पूर्णता में उनका प्राकट्य नहीं है। पूर्णता में ऐश्वर्य का प्राकट्य केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण में है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य का प्राकट्य केवल श्री वृंदावन में है, क्योंकि वृंदावन स्वयं धाम है। फिर स्वरूप दामोदर आगे कहते हैं, चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। ये वृंदावन धाम क्या है? चिंतामणि मय, ये जगत मायामय है, जड़ तत्वमय है, जड़ तत्वों से बना हुआ, लेकिन वृंदावन धाम चिंतामणिमय है, चिंतामणियों से बना हुआ है। भूमि रत्नेर भवन, और भूमि रत्नों का उद्गम है। वृंदावन की सारी भूमि से रत्न निकलते हैं, अनगिनत, कोई सीमा नहीं इसकी। चिंतामणि गणदासी चरण भूषण, और वहां जो दासियां हैं, गोपियां हैं, उनके चरणों में आभूषण क्या है? ये चिंतामणि। तो ये है ऐश्वर्य, दासियों के चरणों में भी ऐसे सब चिंतामणि के आभूषण हैं। कल्प वृक्ष लता जहां सहज कवन, पुष्प फल बिना के नामागे अन्य धन। वृंदावन स्वाभाविक रूप से कल्प वृक्षों का वन है, कल्प वृक्ष और लताएं, और वहां के निवासी जो है, जो ब्रजवासी हैं, वो इस ऐश्वर्य को नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? पुष्प फल बिना के वो न मांगे अन्य धन, इस रत्न वगैरह उनको नहीं चाहिए। हालांकि हैं वो सब, तो उनको क्या चाहिए? केवल फूल चाहिए, पुष्प चाहिए। अनंत काम धेनु ताहा फिरे वने वने दुग्ध मात्र देना के हो न मागे अन्य धने। वृंदावन में और क्या है? अनंत काम धेनु, कामधेनु गाय है, और ये कामधेनु गाय फिरे वने वने वन वन में फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दुग्ध मात्र देन केहो न मागे अन्य धन, इनकी संख्या अनगिनत है। और ये कामधेनु है मतलब सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, परंतु वहां के निवासी जो हैं दूध के सिवाय कुछ नहीं लेते हैं गायों से। गाय समर्थ है, सब कुछ देने के लिए समर्थ है, लेकिन वृंदावन के निवासी को क्या चाहिए? केवल दूध चाहिए इन गायों से। तो इसका मतलब है कि ऐश्वर्य की कमी नहीं है वृंदावन में, परंतु वहां के निवासियों को ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं है, इसका प्राधान्य नहीं है, क्योंकि वो इतने उस रस से युक्त हैं, वृंदावन के रस से, कि उनको केवल उसकी मिठास चखना है, ऐश्वर्य नहीं चाहिए उनको। सहज लोकेर कथा जहां दिव्य गीत, सहज गमन करे यायचे नित्य प्रतीत। वृंदावन में जो सहज वचन है, जो भाषा है वहां का, वो दिव्य गीत के समान है। सहज गमन करे यायचे नित्य प्रतीत, जो साधारण उनका चलना है वो एक दिव्य नृत्य के समान है। सर्वत्र जल जहां अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वाद यहां मूर्तिमान। वहां का सर्वत्र जल जो है वो अमृत है। चिदानंद ज्योति ही स्वाद्य यहां मूर्तिमान, जो निराकार ज्योति है, जो सब ब्रह्म ज्योति जो सब जगह फैली हुई है, वो गोलोक वृंदावन में मूर्तिमान है, अपने दिव्य रूप में उपस्थित है, इसलिए वहां पर सब कुछ स्वयं प्रकाशमान है। लक्ष्मी जी ने गुण जहां लक्ष्मी रसमाज, कृष्ण वंशी कौरे जहां प्रिय सखी काय। ये गोपियां हैं, अनगिनत गोपियां, वो सारी लक्ष्मियां हैं, और इन लक्ष्मियों का समाज है, और वैकुंठ के लक्ष्मियों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है ये, और साथ साथ कृष्ण के वंशी है, जो कि प्रिया सखी का है, कृष्ण भगवान के का प्रिया सखा है ये बांसुरी, जिसको कृष्ण हमेशा अपने निकट रखते हैं और बजाते रहते हैं। और इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ब्रह्म संहित का ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, जो हम रोज सुबह को गाते हैं। आइए श्रीय कांता कांता, ये श्लोक हम एक साथ में उच्चारण करते हैं। आप सबको कंठस्थ है ना? श्रिय कांता कांतः परम पुरुषः कल्पतरवो, द्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम्, कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च। क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान, निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः, श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमितियम्, विदन्तस्ते सन्तः क्षिति विरलचारः कतिपये। ये है गोलोक वृंदावन के ऐश्वर्य का वर्णन। इस प्रकार से स्वरूप दामोदर गोस्वामी बड़े विस्तार में वर्णन करते हैं, और आगे वो बिल्वा मंगल ठाकुर का एक श्लोक बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं च इति सुख सिंधु अहो विभूति ही। इस प्रकार से वृंदावन धाम अपने सारे विभूति और ऐश्वर्य को प्रकट करता है, और बड़े आनंद से इस ऐश्वर्य का विस्तार होता है। जब श्रीवास ठाकुर ने यह सुना तो क्या करने लगे? शूनी प्रेमावेश नृत्य कौरे श्रीनिवास, कक्षताली बाजाय कौरे अट्ट अट्टहास। श्रीवास ठाकुर भागभोर हो गए। श्रीवास ठाकुर वास्तव में केवल मजाक कर रहे थे, और स्वरूप दामोदर के मुख से वो वृंदावन का गौरव सुनना चाहते थे। तो शून्य प्रेमावेश प्रेमावेश में आ गए और नृत्य करने लगे, और कक्षताली बाजाय मतलब जोर से यहां अपने भुजाओं में ताली बजाने लगे, और जोर जोर से हंसने लगे दिव्य आनंद में। इस प्रकार से स्वरूप दामोदर ने वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन किया, तो हालांकि जब वृंदावन की बात आती है तो हम लोग केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, गायों का, वृक्षों का, घास का, नदियों का, रम्य मौसम का, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इतने सारे चिंतामणि, कल्प वृक्ष, रत्न आदि भी यहां पे हैं, प्रचुर मात्रा में हैं। परंतु फिर भी वृंदावन को इसीलिए माधुर्य धाम कहते हैं क्योंकि ऐश्वर्य का ज्यादा महत्व नहीं है वहां के लोगों के लिए। इस ऐश्वर्य से वृंदावन के निवासी प्रभावित नहीं होते, इसको चाहते भी नहीं है। यह है वृंदावन का भक्ति का भाव, जो ऐसे ऐश्वर्य की भावना से भी मिश्रित नहीं है, जिसमें केवल शुद्ध प्रेम है, लेकिन वैकुंठ में ऐसे ऐश्वर्य का मिश्रण है। लक्ष्मी देवी को अपने आप को सुशोभित करना, सारे अलंकार अलंकृत करना, ये पसंद है। वहां के निवासियों को भी ऐसे पसंद है। तो यहां पे भी माधुरी है लेकिन कम प्रकट होता है, ज्यादा ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो वृंदावन सारे ऐश्वर्य का उद्गम है। जो वैकुंठ में ऐश्वर्य है वो वृंदावन से ही आता है, परंतु वृंदावन के निवासियों को इस ऐश्वर्य की कोई परवाह नहीं है। तो अगर हम गोवर्धन के बारे में भी ऐसा सुनते हैं कि इतने सारे रत्नों से बनाए हुए ये पत्थर, और रत्नों के आसन, रत्नों के शैया, रत्नों के दर्पण इत्यादि, तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये है ब्रजभूमि असलियत में। और जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है वो इस वृंदावन धाम को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये भजन आप सब जानते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, ताबे हम हेरे वो श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब मेरा हृदय वासनाओं से मुक्त हो जाएगा और मैं वृंदावन धाम को जैसे है वैसे मैं देख सकूंगा। इस समय जो हम वृंदावन को देख रहे हैं उसके ऊपर माया का पर्दा है, थोड़ी थोड़ी झलक बीच बीच में मिलती है हमको उस माया के पर्दे के बीच से। जब हम अच्छी तरह से जप करते हैं, अच्छी तरह से कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी सेवा भाव में रहते हैं, नम्रता से रहते हैं, तब वृंदावन धाम की एक छोटी सी लेश मात्र झलक हमको मिलती है, उससे हमको हाँ वृंदावन में है। लेकिन बाकी समय हमें मन तंग करता है, जैसे कि यहां बेलगाम में करता है। तो जब हमारा भाव सही हो जाएगा, हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब हम वृंदावन को वैसे देख पाएंगे जैसे हमने आचार्यों के वर्णन में सुना है। लेकिन ये सत्य है, कल्पना नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बताया नहीं गया हुआ है, सत्य है, परम सत्य है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही वातावरण में गोवर्धन के कंदर, गोवर्धन के पत्थरों के ऊपर चलकर रमण किया करते थे। और आखिर में है कंदमूल ही, ये कंदमूल भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है गोवर्धन के ऊपर, और ये गोपों के लिए नाश्ता है। वैसे तो भर भर के टिफिन बॉक्स लाते हैं, अपना डब्बा लाते हैं घर से, लेकिन बीच बीच में नाश्ता करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और वे नाश्ते के लिए बड़ा अच्छा है, स्वादिष्ट है, न केवल गोपों के लिए, गवों के लिए भी, गाय भी खाते हैं इनके कंदमूल। थोड़े कंदमूल मीठे होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं, तरह तरह के स्वाद होते हैं, तो जैसे जैसे उनको पसंद है वैसे इनका स्वाद लेते रहते हैं वो। और कभी कभी ये कंदमूल जो है अकेले खाए जाते हैं, कभी कभी वो अपने भोजन के साथ, प्रसाद के साथ में खाते हैं। और कई बार जब ये ग्वाल बाल अपने गौओं के पीछे भागते हैं तो उनके हाथों में ये दिखाई पड़ता है कंदमूल, कोई कंदमूल खा रहे हैं, अचानक गाय कहीं चली गई, गाय के पीछे जाते हैं तो हाथ में कंदमूल दिखाई पड़ता है। और इन कंदमूल के अलावा तरु मूल भी हैं। तरु मूल मतलब वृक्ष के मूल। आपने अश्वत्थ वृक्ष को देखा होगा कि अश्वत्थ वृक्ष के मूल जो है जड़ वो कैसे होते हैं, कभी जमीन के बाहर भी आते हैं, ऊपर से नीचे भी आते हैं, और जो गांव के बच्चे होते हैं उस पर झूला झूलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वृंदावन में, गोवर्धन में विशेष करके जो विशाल वृक्ष हैं उसके मूल बाहर भी आते हैं, कभी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे जमीन के ऊपर से फिर नीचे जाते हैं। तो भगवान कृष्ण और गोपों के लिए ये खेल करने के लिए बहुत ही अच्छे स्थान है। जैसे यहां बच्चों के पार्क होते हैं ना, उद्यान होते हैं यहां पे पास में, जहां बच्चे लोग चढ़ते हैं, फिर किसी के नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, किसी से बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये तरुमूलानी ये सब वृक्ष के जड़ हैं, जो बाहर दिखाई होने वाले भाग जड़ के, वो कभी कभी उसके ऊपर बैठते हैं, आसन की तरह हो जाते हैं, कभी विश्राम के स्थान हो जाते हैं, कभी छाया के स्थान हो जाते हैं, और उनके मनोरंजन के लिए कभी कभी उसके ऊपर से जाते हैं, कभी नीचे से जाते हैं, कभी बीच में से जाते हैं, कभी उससे झूला झूलते हैं। आपने एक वो चित्र देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो है झूला झूल रहे हैं, खड़े हैं झूला पे, और एक भक्त बैठे हुए हैं, और वो झूला जो है वृक्ष के ऊपर टंगा हुआ है। तो ऐसे सब क्रीड़ा कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ करते थे। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से इनमें तन्मय हुआ करते थे, बिल्कुल खो जाते थे इन लीलाओं में। उनको कोई तनिक मात्र विचार भी नहीं कि मैं भगवान हूं, मुझे सृष्टि का सृजन करना है, अभी सृष्टि के संहार का समय आ गया, अरे वापस जाना पड़ेगा मुझे, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। ये है असलियत में भगवान। अन्य धर्मों में भगवान की जो कल्पना है वो केवल ऐश्वर्य भाव से, कि भगवान का काम क्या है, सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना, जो अच्छे लोग हैं उनको पुरस्कार देना, जो बुरे लोग हैं उनको दंड देना, ये तो भगवान का काम नहीं है। इसलिए भगवान अपने विस्तार करते हैं, अपने आप को, अपने एजेंट्स को, अपने दूतों को ये काम सौंप देते हैं, और अपने आप झूला झूलते हैं, आनंद में अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, कंदमूल खाते हैं, तैरते हैं, मेंढक की जो नकल करते हैं, मछली चल रही कूद के पानी में उनका पीछा करती है, मछली डर के चली जाती है, फिर गायों को चराते हैं, कुश्ती करते हैं, ये है भगवान। और ऐसे भगवान के लीलाएं जो इतने अद्भुत हैं, गोवर्धन न केवल देख रहे हैं लेकिन गोवर्धन उनके एक भाग है, गोवर्धन ने सारी व्यवस्था की है इन लीलाओं के लिए, इसलिए गोवर्धन का सौभाग्य है। इसलिए तो गोपियां कहती हैं हरिदास वर्य सर्वश्रेष्ठ है। गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, हरे कृष्णा। यह है कि गोवर्धन शिला या शालिग्राम क्या है, क्या ये इसकी पूजा की जाती है भक्त के रूप में या भगवान के रूप में। शालिग्राम अलग है, शालिग्राम तो भगवान विष्णु का रूप है, ये शिला केवल गंडकी नदी में नेपाल में पाया जाता है, लेकिन ये गोवर्धन शिला है ये अलग है, ये गोवर्धन का एक शिला है, एक पत्थर है। बताया जाता है कि गोवर्धन शिला को हमें ब्रज से बाहर नहीं लाना चाहिए, बल्कि वहां से गोवर्धन से भी हटाना नहीं चाहिए जब तक कि कोई ब्रजवासी हमको वो शिला नहीं दे। तो कई भक्त जो है वो गोवर्धन शिला की पूजा करते हैं। गोवर्धन शिला की पूजा करना बहुत आसान है। गोवर्धन शिला को अगर हमें किसी ब्रजवासी ने दिया तो उन्हें हम अच्छी तरह सजा के रखें, और फिर हर रोज उनको थोड़ा सा जमुना का पानी या हम प्रदान कर सकते हैं, 8 तुलसी पत्ते और थोड़ा दूध का एक मिठाई पदार्थ संदेश वगैरह कुछ देके गिरिराज संतुष्ट होते हैं। फिर कई भक्त हैं वो सजाते हैं तिलक से, उनकी आंखें करते हैं, उनके नाक इत्यादि मुंह करते हैं, उनकी उनका हंसमुख चेहरा बनाते हैं, और फिर मुकुट भी लगाते हैं, बांसुरी भी लगाते हैं, तो ऐसे उनको कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो गिरिराज शिला जो है गोवर्धन शिला, वो कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि बांसुरी वगैरह भी लगाई जाती है उनके ऊपर। आपने आपने आपके पास किसी गोवर्धन शिला है किसी के पास घर में नहीं। लेकिन आपने देखा है ना गोवर्धन शिला कैसे सजाते हैं भक्त, बड़े सुंदर ढंग से कृष्ण मानकर उनको ऐसे सजाते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।